एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मसीहा के नाम पे खुदा है। सच्चा खुदा है, मुक्ति देता है, शक्ति देता है, वो ही मेरा खुदा है। इसलिए आज हम गाते हैं और खुशियां मनाते हैं, इसलिए आज हम गाते हैं और खुशियां मनाते हैं। वो ही सच्चा खुदा है, आओ नाचे और गाए हम, आओ नाचे गाए हम आज मसीहा के नाम पे।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तेरे वचनों को सुनने और समझने के लिए मदद कर और उन्हें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा राह में चलने के लिए अगुवाई कर। मेरे संग पिता तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है परमेश्वर का पुनर्निर्माण, पृथ्वी नई बनाई गई। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 21 का 1-2 पद में। यहाँ लिखा है, भविष्यवक्ता यूहन्ना कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने, यूहन्ना कहता है, पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से पृथ्वी के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। प्यारो, परमेश्वर मानव जाति और पृथ्वी दोनों को उनके पतन पूर्व गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहता है। हालांकि इस अस्तित्व का स्वरूप अभी हमारी समझ से परे है, फिर भी यह वास्तविक है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके शानदार प्रतिफलों की प्रतीक्षा करें। नए स्वर्ग और नई पृथ्वी वास्तविक है। हमने इन दिनों अधिकांश समय इस पृथ्वी की मूल सृष्टि के अध्ययन में बिताया है। हालांकि हम परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता मानने के महत्व को समझते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम एक नई पुनर्स्थापित सृष्टि की प्रतीक्षा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वैज्ञानिक युग से प्रभावित होकर कुछ लोग बाइबल में प्रस्तुत भविष्य के अस्तित्व की वास्तविकता के बारे में गुप्त संदेह रख सकते हैं। दूसरों को लग सकता है कि ऐसी बातों के बारे में बात करना स्वर्ग जाने की इच्छा के पीछे एक स्वार्थी उद्देश्य को प्रकट करता है, लेकिन वह उद्देश्य परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी सिद्ध सृष्टि के बीच उसके साथ रहने की इच्छा है। चलिए आज हम इसका अध्ययन करें कि परमेश्वर किस प्रकार चाहता है कि हम उसके साथ उस स्वर्गीय घर में रहें जिसे उसने हमारे लिए तैयार किया है। हम नए जगत की प्रतीक्षा कर सकते हैं। परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा हमें बाइबल में देते हैं। इसके विषय में हम 1 कुरिन्थियों 3:14, मत्ती 5:12, प्रकाशित वाक्य 21:1-7 और 10-21 तथा प्रकाशित वाक्य 22:1-3 और 17 में पढ़ सकते हैं। बाइबल हमें हमारे अनंत प्रतिफल के बारे में बतलाती है। हम इन पदस्थलों में उसके बारे में पाएंगे। हमारे सीमित मन के लिए यह समझना असंभव है कि हमारे असीम ईश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। नए स्वर्ग और पृथ्वी की पूर्णता का पर्याप्त वर्णन कैसे किया जा सकता है? बहन एलन जी वाइट कहती हैं, स्वर्ग का वर्णन करने के लिए भाषा बिल्कुल भी कमजोर है। जैसे ही दृश्य मेरे सामने आता है, मैं विस्मय में खो जाती हूँ। उस अद्भुत वैभव और उत्कृष्ट महिमा से अभिभूत होकर मैं कलम रख देती हूँ और कहती हूँ, ओह कैसा प्रेम, कैसा अद्भुत प्रेम। कोई भी श्रेष्ठ भाषा स्वर्ग की महिमा या किसी उद्धारकर्ता के प्रेम की अतुलनीय गहराई का वर्णन करने में असमर्थ है। वह कहती हैं अपनी किताब प्रारंभिक लेखन में पृष्ठ 289 में, यह देखते हुए कि हमारे अनंत प्रतिफल की महिमा को समझना असंभव है, यीशु चाहता है कि हम इसे किस दृष्टि से देखें। उसके विषय में हम पाते हैं मत्ती 5:12 और प्रकाशित वाक्य 22:17 पद में। दरअसल बाइबल का हर प्रमाण यही दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे भविष्य के जीवन के आनंद को अपने साथ बांटने के लिए बेहद उत्सुक है। वह हमें आकर्षक संकेत देता है जिन्हें हम समझ सकते हैं ताकि हम आगे की ओर देख सकें। नई पृथ्वी में प्रकृति का वर्णन कैसे किया गया है, इसे हम पाते हैं यशायाह 55:13 में और यशायाह 65:25 में तथा प्रकाशित वाक्य 21:23-25 में। यशायाह और प्रकाशित वाक्य में दिए गए संक्षिप्त विवरण के अलावा एलन वाइट कुछ सुंदर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि नया स्वर्ग और पृथ्वी किस तरह होगी। वह लिखती हैं, मैंने सभी प्रकार के फूलों से भरा एक और क्षेत्र देखा और जैसे ही मैंने उन्हें तोड़ा, मैंने चिल्लाया, वे कभी नहीं मुरझाएंगे। इसके बाद मैंने लंबी घास का एक मैदान देखा जो देखने में बहुत शानदार था। यह हरा भरा था और इसमें चांदी और सोने का प्रतिबिंब था, क्योंकि यह राजा यीशु की महिमा के लिए गर्व से लहरा रहा था। फिर हम एक जंगल में दाखिल हुए। हमारे यहाँ के अंधेरे जंगलों की तरह नहीं, लेकिन प्रकाश और सभी तरफ शानदार पेड़ों की शाखाएं इधर उधर हिल रही थी और हम सभी चिल्लाए, हम जंगल में सुरक्षित रूप से रहेंगे और जंगल में सोएंगे। वहां के पेड़, फलों और चिड़ियों ने उस जगह को चारों ओर से शानदार बना दिया था। प्रारंभिक लेखन उसका पृष्ठ 19 में हम पाते हैं। और आगे हम बाइबल से पढ़ सकते हैं नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में जानवर कैसे होंगे। यह हमें मिलती है होशे 2:16-20 और यशायाह 11:6-9 में तथा यशायाह 35:1-10 में और यशायाह 65:25 में। भविष्यवक्ता यशायाह द्वारा छुड़ाए गए लोगों के भाग्य का वर्णन वर्तमान पतित व्यवस्था के उलटफेर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके अलावा भविष्यवक्ता होशे ने जानवरों को परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के साथ शांति की वाचा में शामिल किया है। शिक्षा की पुस्तक प्रेस 304 में एलन वाइट लिखी है, वहां मनुष्य को उसका खोया हुआ राजत्व पुनः प्राप्त होगा और निम्न श्रेणी के प्राणी पुनः उसके प्रभुत्व को पहचानेंगे। उग्र लोग नम्र हो जाएंगे और डरपोक लोग विश्वसनीय हो जाएंगे। अपनी पुनर्स्थापना के समय मनुष्य कैसे दिखाई देंगे, क्या आप जानते हैं? मलाकी 4:1-2 में हम यह पाएंगे। मलाकी ने उधार पाए हुए लोगों का वर्णन इस प्रकार किया है कि उनमें बछड़े जैसी शक्ति वापस आ गई है। वे अनंत युवा अवस्था की पूरी शक्ति के साथ अपने गौरवशाली घर में खुशी से उछलेंगे। लंबे समय से लुप्त अदन के जीवन के वृक्ष पर पुनर्स्थापित होकर उधार पाए हुए लोग अपनी आदिम महिमा में मानव जाति के पूर्ण विकास तक बढ़ेंगे। महान विवाद प्रेस 645 में हम यह पाते हैं, किसी को भी विश्राम की आवश्यकता या इच्छा नहीं होगी। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने और उसके नाम की स्तुति करने में कोई थकान नहीं होगी। हम हमेशा सुबह की ताजगी महसूस करेंगे और उसके अंत से हमेशा दूर रहेंगे। परमेश्वर की नई व्यवस्था में दुख, पीड़ा और मृत्यु नहीं होगी। कहता है होसे 13:14, 1 कुरिन्थियों 15:22-26, 1 कुरिन्थियों 15:42-44, 54-55 तथा प्रकाशित वाक्य 21:4, वहां रोना नहीं होगा, वहां मृत्यु नहीं होगी। यह उद्धार पाए हुए लोगों के नए जीवन का आश्चर्य है, एक वास्तविक भौतिक अस्तित्व, लेकिन बिना दर्द, पीड़ा और मृत्यु के होगा। भाइयों और बहनों, कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या हम अपने उन प्रियजनों को पहचान पाएंगे जिन्हें हमने इस जीवन में खो दिया है। जैसे यीशु मरे हुओं में से जी उठे, वैसे ही जो लोग उसमें सो गए हैं वे भी जी उठेंगे, बाइबल कहती है। हम अपने मित्रों को वैसे ही जानेंगे जैसे शिष्य लोग यीशु को जानते थे। इस नश्वर जीवन में वे भले ही विकृत, रोगग्रस्त या विकृत रहे होंगे, वे पूर्ण स्वास्थ्य और सुडोल शरीर में जी उठेंगे। फिर भी महिमामय शरीर में उनकी पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। परमेश्वर हमारे लिए जो किया है उसे हम वास्तविक में नहीं देखे हैं और पूरी तरह से नहीं सुने हैं। बाइबल कहती है आंखें नहीं देखी है ऐसे बड़े महान चीजों को परमेश्वर अपने विश्वासी लोगों के लिए बनाया है, तैयार किया है। मती 22:23-30 में और 1 कुरिन्थियों 2:9 में इसे हम पढ़ सकते हैं, साथ ही भजन संहिता 16:11 में। सदुकियों की गलतियों में से एक यह थी कि वे मानवीय मामलों में कार्यरत परमेश्वर की आत्मा की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। अपने संशयवाद में वे स्वर्गदूतों, पुनर्स्थान और अनंत जीवन के अस्तित्व को नकारते थे। इसलिए यीशु को शर्मिंदा करने के इरादे से उन्होंने पुनर्स्थान पर लेविरेट विवाह नियम, जो व्यवस्था विवरण 25:5-6 में मिलता, इसके परिणामों के बारे में एक काल्पनिक प्रश्न पूछा। लेकिन यीशु के लिए उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे परमेश्वर या उसके वचन की शक्ति को नहीं जानते थे। वे यह भूल गए थे कि जो परमेश्वर मरे हुओं को जिलाने में इतना शक्तिशाली है, उसके पास एक परिपूर्ण नई पृथ्वी पर समाज की एक परिपूर्ण व्यवस्था को नए सिरे से स्थापित करने की बुद्धि और शक्ति भी है। इसके अलावा जो लोग बचाए जाएंगे वे इस शानदार नई व्यवस्था से संतुष्ट और खुश रहेंगे, हालांकि वे इस जीवन में भविष्य में क्या होगा इसका पूरी तरह से एहसास नहीं कर पाएंगे। जाहिर है कि विवाह की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जीवन की एक अलग व्यवस्था कायम होगी। हमारा प्रेममय, शक्तिशाली और बुद्धिमान परमेश्वर अपनी समस्त रचनात्मक शक्तियों का उपयोग हमारी खुशी और संतुष्टि की सभी अपेक्षाओं को असीम रूप से पार करने के लिए करेगा। क्या आप जानते हैं प्यारों कि हम वहां क्या करेंगे? इसके बारे में यशायाह नबी लिखते हैं, हम पाते हैं इसे यशायाह 65 का 21, 22 और 66 का 22 और 23 में हम इसे बाइबल से पढ़ेंगे। यशायाह 65 का 21 और 24 कहता है, वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा, 22 पद में कहता है कि वे बनाएंगे और दूसरा बसे, वह वे लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। यशायाह 66 का 22 और 23 कहती है, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा, यहोवा की यही वाणी है। फिर ऐसा होगा कि एक नए चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे, यहोवा का यही वचन है। भाइयो, एलन वाइट के प्रेरित लेखों में हम कई गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें हमें शामिल होना होगा। आराधना, संगीत, शोध, निर्माण, संगति, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं। नई बनी हुई पृथ्वी पर छुड़ाए हुए लोग, बचाए हुए लोग उन व्यवसायों और सुखों में संलग्न होंगे जिनसे आदम और हवा को आरंभ में खुशी मिली थी। वे अदन का जीवन बगीचे और मैदान में जीवन व्यतीत करेंगे। प्रोफेट्स एंड किंग्स पृष्ठ 330 में मिलता है। उसी तरह स्वर्गदूत बिनाए लाए और यीशु ने उन्हें भी संतों को प्रस्तुत किया। स्वर्गदूतों ने बिनाए लाए और यीशु ने संतों को उसे प्रस्तुत किया। आज्ञा देने वाले स्वर्गदूतों ने पहले स्वर बजाया और फिर हर एक आवाज कृतज्ञतापूर्ण प्रसन्न स्तुति में उठी और हर हाथ ने कुशलता से बीना के तारों पर झंकार की, जिससे समृद्ध और परिपूर्ण सुरों में मधुर संगीत निकला। तब जीवन के अनुभव की सभी उलझनें स्पष्ट हो जाएंगी, जहां हमें केवल भ्रम और निराशा, टूटे हुए उद्देश्य और विफल योजनाएं दिखाई देती थी, वहां एक भव्य सर्वोपरि विजयी उद्देश्य, एक दिव्य सामंजस्य दिखाई देगा। शिक्षा की पुस्तक पृष्ठ 305 में हम यह पाते हैं, जैसे जैसे वे संतगण परमेश्वर की बुद्धि, प्रेम और शक्ति के बारे में अधिक से अधिक सीखेंगे, उनका मन लगातार विस्तृत होता जाएगा और उनका आनंद लगातार बढ़ता जाएगा। ब्राह्मण के सभी खजाने परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों के अध्ययन के लिए खुले होंगे। नश्वरता से उन्मुक्त होकर वे दूर दूर के लोगों की ओर अपनी अथक उड़ान भरेंगे, कहता है महान विवाद की पुस्तक में पृष्ठ 677 में। प्यारो, हालांकि कुछ लोग यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन अंतत उनके मित्रों ने उन्हें पहचान लिया। मरियम ने यीशु की आवाज पहचान ली, यह हम पाते हैं यूहन्ना 20 का 11 से 16 में। थोमा ने उनके शारीरिक रूप को पहचान लिया, यूहन्ना 20 का 27 और 28 में हम पाते हैं। और इमाउस के शिष्यों ने यीशु के हाव भाव पहचान लिए, लूका 24 का 30, 31 और 35 में। डिजायर ऑफ एजेस पृष्ठ 804 में हम पढ़ते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान उन सभी के अंतिम पुनरुत्थान का एक प्रकार था जो उसमें सो गए थे। पुनर्जीवित उद्धारकर्ता का मुख, उनका व्यवहार, उनकी वाणी, ये सब उनके शिष्यों को परिचित थे। अंत में जब परमेश्वर पृथ्वी को नया बनाएगा, पाप मुक्त हो जाएगा और वहां धार्मिकता रहेगी, बहन एलन वाइट इसको इस तरह विवरण करती है, कहती है, महान विवाद समाप्त हो गया है, पाप और पापी अब नहीं रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वच्छ है, विशाल सृष्टि में सद्भाव और आनंद की एक धड़कन धड़क रही है, जिसने सब कुछ रचा है उसके असीम अंतरिक्ष के सभी क्षेत्रों में जीवन, प्रकाश और आनंद प्रभावित होता है। सूक्ष्मतम परमाणु से लेकर विशालतम जगत तक सभी वस्तुएं सजीव और निर्जीव अपनी अप्रीतम सुंदरता और पूर्ण आनंद में यह घोषणा करती हैं कि ईश्वर प्रेम है। हाँ प्यारो, वह दिन आने वाला है, वह वास्तविक है। हम परमेश्वर के बातों पर जो बाइबल में दिया गया है उसमें विश्वास करें और हम उस दिन के लिए तैयार करें। वह सच्चा है, आइए हम उसकी प्रतीक्षा करें। हम अपने जीवन को तैयार करें, अपने मनों को, अपने हृदय को प्रभु यीशु को दे दे कि वह हमें अपने समान बनाएगा ताकि हम उस स्वर्गीय धार्मिक राज्य में रह सकते हैं जहाँ धार्मिकता वास करती है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, वहाँ पाप कुछ भी नहीं है। परमेश्वर पिता आपको और हमको मदद करे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम उस देश के लिए, उस राज्य के लिए, उस दिन के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए और तेरे सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हमें तैयार कर तेरे राज के लिए जो तू हमारे लिए तैयार किया है, उस स्वर्गीय राज जहाँ पर धार्मिकता और प्रेम ही रहेगा। हमें उस दिन के लिए, उस राज के लिए तैयार कर, हमें तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। मैं श्रोताओं को भी तो आशीष देता हूँ। इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।